ॐ स्वस्ति पन्थां मनुचरैं सूर्य चन्द्रमसाविव पुनर्दधताघ्नता जानिता संगमेमहि पापी की बेली बढ़ी पुण्य घटते जाते हैं इसीलिए तो दुख संताप बढ़ते जाते हैं। अच्छे पौधे तो पनपते हैं पानी देने पर झाड़ झंकारे अपने आप बढ़े जाते हैं। जिंदगी की यही है कहानी नाव कागज की बहता सा पानी नाव कागज की बहता सा पानी जिंदगी की यही है कहानी कर्म ऐसे कमा ले ओ बंदे जिसे रह जाए कायम निशानी नाव कागज की बहता सा पानी जिंदगी की यही है कहानी कर्म ऐसे कमा ले ओ बंदे जिसे रह जाए कायम निशानी नाव कागज की बहता सा चंद सांसों का ये मेल है पांच तत्वों का ये मेल है पांच तत्वों का ये मेल है चंद सांसों का ये खेल है दीप तन का तभी तक जलेगा दीप तन का तभी तक जलेगा जब तलक प्राणी का तेल है ऐ बहारे समायो ने तेरा ऐ बहारे समायो ने तेरा पीछे दौरे की जाती है आनी नाव कागज की बहता सा पानी जिंदगी की यही है कहानी कर्म ऐसे कमा ले ओ बंदे जिसे रह जाए कायम निशानी नाव कागज की बहता सा काम अच्छा न कोई किया दिल पटाना किसी का सिया काम अच्छा न कोई किया दिल पटाना किसी का सिया जिसका जीना न दुनिया ने जाना जिसका जीना न दुनिया ने जाना वो जिया तो भला क्या जीना आदमी मर के भी वो अमर है आदमी मर के भी वो अमर है जिसकी दोहराए दुनिया कहानी नाव कागज की बहता सा पानी जिंदगी की यही है कहानी कर्म ऐसे कमा ले ओ बंदे जिसे रह जाए कायम निशानी नाव कागज की बहता सा किसी को कोई प्यारा नहीं कुछ हमारा तुम्हारा नहीं किसी को कोई प्यारा नहीं कुछ हमारा तुम्हारा नहीं स्वार्थी जग मेरा केस तेरा बिन प्रभु के गुजारा नहीं व्यर्थ यूं ही भटकता फिरेगा व्यर्थ यूं ही भटकता फिरेगा काम आए न तर्जे बयानी नाव कागज की बहता सा पानी जिंदगी की यही है कहानी कर्म ऐसे कमा ले ओ बंदे
से रह जाए कायम निशानी, नाव कागज की बहता सा पानी।
आए हुए आदरणीय बुजुर्गों एवं मातृशक्ति, कवि ने भजन के माध्यम से कहा कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है उसका जीवन सार्थक है, जो अपने लिए ना जी करके बल्कि दूसरों के लिए जीता है उसका ही जीवन सार्थक है और हमें जीना चाहिए, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने जो मानव चोला दिया है वो व्यर्थ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के साथ मिलकर के जीने के लिए। कवि ने कहा जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीते रहे हैं संसार में उनका नाम संसार में अमर है। और कैसे जिए, कहते हैं एक बार ईश्वरचंद जी विद्यासागर बिहार में किसी स्टेशन पर उतरे। जब ये उतर करके प्लेटफार्म पर जा रहे थे तो एक बच्चा 8-10 वर्ष का आया और आकर के कहता है, पुराने समय की बात है, कि बाबूजी मुझे 2 पैसे दो। ईश्वरचंद विद्यासागर पूछते हैं कि 2 पैसे लेकर के क्या करोगे। ये बच्चा कहता है 2 पैसे में मैं अपने लिए और मां के लिए रोटी ले जाऊंगा, रोटी खाऊंगा। ईश्वरचंद विद्यासागर कहते हैं अगर मैं तुम्हारे लिए 10 पैसे दे दूं तो क्या करोगे। ये कहता है 2 पैसे में तो रोटी खा लेंगे हम, बाकी 8 पैसे में बचा करके रख लूंगा। फिर ईश्वरचंद विद्यासागर कहते हैं अगर मैं तुम्हारे लिए 4 आने दे दूं तो। तो इसने कहा बाबूजी फिर 23 पैसे बचा के रखूंगा। फिर ईश्वरचंद विद्यासागर कहते हैं अगर मैं तुम्हें 8 आने दे दूं तो। ये बच्चा इनकी ऊपर को देख करके मुंह करके देख कर कहता है बाबूजी आपने अभी 2 पैसे तो दिए नहीं और बात 8 आने की कर रहे हो। भले ही मैं गरीब हूं भीख मांगता हूं तुम्हें, पैसे नहीं देने तो मत दो, लेकिन कम से कम मेरी गरीबी की मजाक तो मत उड़ाओ। ईश्वरचंद विद्यासागर कहते नहीं सही बताओ अगर मैं तुम्हें 8 आने दे दूं तो क्या करोगे। ये बच्चा कहता है अगर तुम मुझे आज 8 आने दे दोगे तो मैं आज के बाद भीख नहीं मांगूंगा, अपना कोई काम कर लूंगा। कहते हैं ईश्वरचंद विद्यासागर ने 1 रुपया जेब में से निकाला और इस बच्चे को दे दिया। काफी समय बीत गया, 8-10 वर्ष बाद जब ईश्वरचंद विद्यासागर उसी स्टेशन पर से होकर के गुजर रहे थे तो ये भी बच्चा नहीं रहा, ये भी बड़ा हो गया 20-22 वर्ष का। इसने इनको पहचान लिया और पहचान करके ही अपनी दुकान को छोड़ करके दौड़ा आया और आकर के कहता है बाबूजी मेरी दुकान पे आओ, फल मेरी दुकान पे अच्छे हैं। ईश्वरचंद विद्यासागर कहते हैं मैं किसी रिश्तेदारी में नहीं आया, ना ही मैं यहां किसी से मिलने आया हूं, मैं तो किसी फंक्शन पे आया हूं, मुझे फलों से क्या मतलब। कहने लगे नहीं बाबूजी मेरी दुकान पे तो आओ। कहने लगे नहीं नहीं मैं, अरे जब फल लेने नहीं तो मैं तेरी दुकान पे क्यों आऊं। ये बच्चा कहता है बाबूजी आप मुझे भूल गए, आप पहचान नहीं पा रहे। बोले मैं तुझे जानता ही नहीं, पहचान क्या रहा हूं। ये बच्चा कहता है बाबूजी मैं वही बच्चा हूं जिसको कभी आपने 10-12 वर्ष पहले 1 रुपया दिया था और मैंने प्रतिज्ञा की थी ना कि आप अगर 8 आने दोगे तो मैं आज के बाद भीख नहीं मांगूंगा। मैंने आपके उस रुपए से इतनी कामयाबी की है, अपनी जगह बना ली है अपनी दुकान और फल की दुकान में, भीख नहीं मांगता हूं। विद्वान लोग कहते हैं कि किसी को भिक्षा ना दे करके बल्कि उसको किसी काम पे लगा दो, जीवन बन जाएगा। लेकिन आज तो हम कहां दूसरों के लिए ध्यान देते हैं, आज तो हम अपने लिए जीते हैं केवल। और कवि कहता है
अपने लिए जो जिए इस जहान में जी हो, अपने लिए जो जिए इस जहान में जी हो, ये जीना भी क्या जीना है बात रखना ध्यान में जी हो, अपने लिए जो जिए इस जहान में जी हो। माना करोड़ों कोई अरबों का माली है, माना करोड़ों कोई अरबों का माली है, अरबों का माली है, दया और उदारता से हृदय उसका खाली है,
हृदय उसका खाली है, केवल चोले का अंतर है उसमें और हैवान में जी हो। अपने लिए जो जिए इस जहान में जी हो, ये जीना भी क्या जीना है बात रखना ध्यान में जी हो। अपने लिए जो जिए इस जहान में जी, लक्ष्मी पति होकर भी कौड़ी दान करता ना, कौड़ी दान करता ना, खेलता माया से निस्दिन ईश्वर से डरता ना, ईश्वर से डरता ना, करता ना सत्कार किसी का धन के गुमान में जी हो। अपने लिए जो जिए इस जहान में जी हो, ये जीना भी क्या जीना है बात रखना ध्यान में जी हो। अपने लिए जो जिए इस जहान में जी, भूख से किसी का बालक मरता पड़ोस में, मरता हो पड़ोस में, भूख से किसी का बालक मरता हो पड़ोस में, मरता हो पड़ोस में, धनी राम ज्यादा खाकर अफरता पड़ोस में, अफरता पड़ोस में, लानत तेरे खाने पर और खाक तेरी शान पे जी हो। अपने लिए जो जिए इस जहान में जी हो, ये जीना भी क्या जीना है बात रखना ध्यान में जी हो। अपने लिए जो जिए इस जहान में जी, जिस पे गुमान उसको छोड़ करके जाना है, छोड़ करके जाना है, जिस पे गुमान उसको छोड़ करके जाना है, छोड़ करके जाना है, मिट्टी के पुतले का तो मिट्टी में ठिकाना है, मिट्टी में ठिकाना है, ऐसा ही बेमोल नियम है प्रभु के विधान में जी हो। अपने लिए जो जिए इस जहान में जी हो, ये जीना भी क्या जीना है बात रखना ध्यान में जी हो। अपने लिए जो जिए इस जहान में जी हो। कवि कहता है कि जो इंसान अपने लिए जीता है उसका जीना कोई जीना नहीं है। सही मायने में जीना उसका है जो अपने लिए ना जी करके बल्कि दूसरों के लिए जीता है। आज हम जिस भारत देश में आजाद बैठे हैं, अगर कहीं वो नौजवान भी यही सोच लेते कि हम क्यों जिए दूसरों के लिए, अपने लिए जी लें, तो फिर आज आजाद बैठ जाते। महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज के सामने भी यही प्रश्न रखा गया कि स्वामी दयानंद तुम 18-18 घंटे की समाधि लगा लेते हो और इस भारत देश की जनता के लिए इस समाधि के सुख को छोड़ करके जा रहे हो। अगर महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज भी यही सोच लेते कि चलो अपने लिए जिए, तो फिर आज हमारी क्या हालत होती। कहा परमपिता परमात्मा ने तुम्हें मानव चोला देकर के भेजा है, तो मानव जो चोला पाकर के सार्थकता तभी है जब हम दूसरों के लिए जिए। उठाकर के देखें इतिहास को, कवि कहता है कि जो दूसरों के लिए जिए हैं, जिन्होंने दूसरों के लिए अपने प्राणों को बलिदान दिया है, वो सदा अमर हो गए हैं। उनका इतिहास में नाम अमर है, संसार में नाम अमर है। मेरठ के अंदर औगढ़नाथ के मंदिर पर प्याऊ लगा करती थी और उस समय देश में जो अंग्रेज लोग थे ब्रिटिश शासन काल में, दो प्रकार की सेना इन्होंने बनाई हुई थी, एक तो गोरा पलटन के नाम से और एक काली पलटन। काली पलटन में जो थे हमारे देश के नौजवान भर्ती थे और ये गोरा पलटन में जो थे ये अंग्रेज लोग थे।
तो ये गोरा पलटन वाले जो थे ये तो अपने वहीं रहते थे जो आजकल मेरठ में गोल भट्टा है और ओगड़नाथ की प्याऊ के बराबर में जो रहते थे हमारे देश के नौजवान जिन्हें काली पलटन के नाम से पुकारते थे वहां पर प्याऊ लगा करती थी। उन दिनों छुआछात का इतना ज्यादा प्रचार था कि पंडित जी महाराज जो पानी पिलाते थे वहां प्याऊ पर लोटा में पानी लेकर के एक गज का बांस की नलकी होती थी, बांस की नलकी के अंदर ऊपर से धार बांध कर डालते थे और नीचे जब पानी गिरता था उसको पीने वाला पीता था। एक दिन एक नौजवान कंधे पर राइफल टंगी है, राइफल टंगे हुए पानी पीने के लिए उधर को निकला और इसने आकर के पंडित जी महाराज से कहा कि पंडित जी मुझे पानी पिलाओ। पंडित जी महाराज ने पानी पिलाने के लिए वही तरीका अपनाया, लोटा भरा और भर करके बांस की नलकी बीच में लगाई और जैसे ही पानी डालना चाहते थे वहीं पर एक बहन ने नौजवान ने इस नौजवान को पानी पीने के लिए अंजलि बनाए देखा, इसने दूर से आवाज कसी और आवाज लगा करके कहा कि पंडित जी महाराज पानी जरा ऊपर से पिलाना। कि पंडित जी कहते हैं बेटे मैं तो पानी ऊपर से पिला रहा हूं। ये कहने लगी हां इसलिए कह रही हूं कि कहीं तुम्हारा लोटा जो है झूठा ना हो जाए। पंडित जी महाराज कहते हैं झूठा कैसे हो जाएगा, क्योंकि बांस की नलकी, ये जो बांस की नलकी लगा रखी है एक गज की लोटा के उसके हाथ के बीच में, तो हाथ में से एक गज पानी उछल के थोड़ी पहुंच जाएगा लोटा पर। ये कहती है कहीं ऐसा ना हो कि हाथ का जो झूठा पानी है वो बांस की नलकी से लग जाए और नलकी से कहीं ऊपर लोटा टच हो जाए। पंडित जी महाराज कहते हैं अगर ऐसा हो भी गया तो फिर क्या दिक्कत है। कहने लगे तुम्हारा लोटा पवित्र हो जाएगा। ये पंडित जी महाराज कहते हैं लोटा पवित्र इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि नीचे जो पानी पी रहे हैं वो भी तो पंडित हैं। जिस समय कहा कि नीचे जो पानी पी रहे हैं वो भी पंडित हैं, ये बहन कहती है इस पंडित का नाम क्या है। पंडित जी महाराज कहते हैं इस पंडित का नाम है मंगल पांडे। जिस समय मंगल पांडे का नाम सुना और कंधे पर राइफल को देखा, ये बहन कहती है तुम इन्हें पंडित कहते हो, अरे इन्हें तो कसाई कहना चाहिए। ये पंडित जी कहते क्यों, अभी तक इस मंगल पांडे को ये पता नहीं था कि क्योंकि उन दिनों में जो कारतूस चलते थे मुंह से वो खोले जाते थे, खोलने के बाद जब राइफल में चलते थे और उस समय पर ये अंग्रेज लोग उस गाय के कारतूस के पीछे खोलने की जगह पर गाय की चर्बी लगाया करते थे। इस नौजवान को पता नहीं था। ये बहन कहती है तुम्हें ना पंडित कहते हो कसाई कहना चाहिए, अरे जिसे हम धर्म संस्कृति का चिन्ह मानते हैं और जिसे हम मां कहते हैं उस गौ माता के चर्बी लगे कारतूस को ये हाथ से मुंह से खोल करके और जब राइफल में चलाए। कहते हैं आज जब इस नौजवान को पता चला इसने पानी नहीं पिया बल्कि हाथों का पानी तो नीचे गिरा दिया और राइफल को उठाया और उठाकर किसन 1857 का इतिहास इस बात का साक्षी है। कवि ने कहा जिन्होंने देश के लिए राष्ट्र के लिए कहीं भी जो भी त्याग का कार्य किया है उनका नाम दुनिया में हमेशा अमर है। और इस भारत देश की आजादी में केवल एक ही तो नहीं है, क्योंकि आज कुछ मेरा मन बना कि चलो देशभक्ति की बातें करें, प्रभु भक्ति की तो आचार्य जी करते हैं, आज मगर चलो मैं थोड़ी से गर्म दल की बातें कर लूं। तो कवि ने कहा जिन्होंने भी इस देश के लिए बलिदान दिए हैं उनका नाम संसार में हमेशा अमर है, और केवल एक मंगल पांडे नहीं।
आजादी की बलिवेदी पर, आजादी की बलिवेदी पर चढ़ गए जो दीवाने, अच्छा हम कहते हैं लो उनके अफसाने, अच्छा हम कहते हैं लो उनके अफसाने। आजादी की बलिवेदी पर चढ़ गए जो दीवाने, अच्छा हम कहते हैं लो उनके अफसाने, अच्छा हम कहते हैं लो उनके। वीर भगत सिंह की कुर्बानी, राजगुरु सुखदेव की जवानी, वीर भगत सिंह की कुर्बानी, राजगुरु सुखदेव की जवानी, ऊधम सिंह रो
सन चापे कर लाला लाजपति बिस्मिल से खर कर गए अपनी अमर कहानी चूम गए फांसी के फंदे चूम गए फांसी के फंदे हंसी हंस करी मरदानी अच्छा हम कहते हैं लो उनके अफसाने अच्छा हम कहते हैं लो उनके अफसाने आजादी की बलि वेदी पर चढ़ गए जो दीवाने अच्छा हम कहते हैं लो उनके अफसाने अच्छा हम कहते हैं लो उनके
कवि कहता है इस भारत माता के इतिहास में केवल एक मंगल पांडे तो नहीं है बल्कि कहा कि उठाकर के देखो इतिहास को राजगुरु सुखदेव भगत सिंह और वो सरदार भगत सिंह कहते हैं जिस समय इन्होंने जाकर के तीनों नौजवानों ने बहरी सरकार के कान खोलने के लिए असेंबली के अंदर जाकर के बम छोड़ा और वहां नारे लगा रहे हैं कि अंग्रेजों हमारे भारत देश को छोड़ करके चले जाओ नारे लगाते लगाते तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया और जिस समय गिरफ्तार किया उस समय सरदार भगत सिंह जेल में चले गए और जेल से ले जाने पर अदालत में सरदार भगत सिंह को पेश किया गया जिस समय सरदार भगत सिंह को जज के सामने पर पेश किया
एक ही रोज सरदार भगत सिंह कचहरी बीच बुलाया गया हंसना यहाँ पर सख्ती मना है उसको यो समझाया गया उसको यो समझाया गया मगर हंसी को रोक सकाना बहुत ही उसे दबाया गया इसको फांसी होनी चाहिए ऐसा हुक्म सुनाया गया फांसी गोली से मरना फांसी गोली से मरना वीरों की निशानी होती है देश धर्म पर मिटे जो उनकी अमर कहानी होती है हंसते हंसते जिया करें यही नौजवानी होती है देश धर्म पर मिटे जो उनकी अमर कहानी
कहते सरदार भगत सिंह को अदालत में पेश किया गया और जिस समय जज के सामने पर ये सरदार भगत सिंह खड़ा है उस समय पर सरदार भगत सिंह को हंसी आ गई जिस समय हंसी छूटी हंसी छूटने पर जज नाराज हुआ और क्रोध में कहता है भगत सिंह तुम्हें पता है इस हंसी की सजा में क्या दे सकता हूं कहने लगे जो जज साहब आप सजा देना चाहें वो दे लो जज कहता है अपनी इस हंसी को रोको क्योंकि तुम्हारे इस हंसने से इस अदालत की तौहीन हो रही है भगत सिंह कहता है जज साहब मैंने तो हंसना सीखा है मैंने कभी रोना नहीं सीखा और मैं तो हंसता रहूंगा जब कहा कि मैं हंसता रहूंगा तो जज ने क्रोध में आकर के अदालत की तौहीन कर रहा है सरदार भगत सिंह को फांसी की सजा दे दी जिस समय फांसी की सजा दी सरदार भगत सिंह कहता है रे जज साहब
जज से बोला भगत सिंह है हंसने में आनंद मुझे धधक रही जो ज्वाला दिल की कभी बुझाए नहीं बुझे कभी बुझाए नहीं बुझे सदा शहीदों की जय बुलती कायर कमीना नहीं बुझे कर फांसी पर हंसी आ गई कहाँ मरने को जगे तुझे कहाँ मरने को जगे तुझे फांसी गोली से मरना वीरों की निशानी होती है देश धर्म पर मिटे जो उनकी अमर कहानी होती है हंसते हंसते जिया करें यही नौजवानी होती है देश धर्म पर मिटे जो उनकी अमर कहानी
सरदार भगत सिंह कहता है रे जज साहब तूने मेरे हंसने के ऊपर मुझे फांसी की सजा तो दे दी लेकिन एक बात बता, अगर कहीं मुझे फांसी के तख्ते पर भी खड़े होकर के हंसी आ गई तो तेरे पास और कोई सजा बची है क्या? अरे रोते तो वो हैं जो कायर होते हैं, जिनके अंदर स्वाभिमान नाम की चीज नहीं होती। और वाकई में सही बात है, जो व्यक्ति स्वाभिमानी होता है ना वो कभी रोता नहीं है, ना वो कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाता है, ना कभी झुकता है। और वही स्वाभिमान सरदार भगत सिंह के अंदर था। और याद रखना है स्वाभिमान क्या है। कहते हैं गांव का किसान बेचारे के अकाल पड़ गया, फसल मारी गई, था स्वाभिमानी। लालाजी के पास में गया और जाकर के कहता है लालाजी मुझे 1000 रुपए उधार दे दो। लालाजी कहने लगे भैया हम तो बिना गिरवी रखे पैसे देते ही नहीं, अगर कुछ गिरवी रखने को लाए हो तो पैसे ले जाओ। ये किसान कहता है अगर गिरवी रखने को मेरे पास कुछ होता तो तुम्हारे पास ही क्यों आता, बेच करके काम चला लेता। कहने लगे फिर भी तो कुछ ना कुछ तो गिरवी रखना पड़ेगा। लालाजी ने अजमा इसकी के व्यक्ति स्वाभिमानी है, अपनी इज्जत को समझता नहीं, समझता मेरे पैसे मारेगा तो नहीं। लालाजी ने कहा भैया बिना पैसे रखे हम कुछ नहीं देते। जब इन्होंने कहा कि हम बिना पैसे रखे कुछ भी नहीं देते तो एक किसान जो था बेचारे की आंखों में आंसू आ गए, और अपने आंखों में आंसू लेकर के इसने अपनी मूंछ का एक बाल उखाड़ा और बाल उखाड़ करके कहता है रे लाला ले ये 1000 रुपए में मेरा मूंछ का बाल गिरवी धर ले, और जिस दिन मैं तेरे 1000 रुपए देने के लिए आऊंगा उस दिन ही अपना मूंछ का बाल ले जाऊंगा। जिस समय इसने मूंछ का बाल लालाजी को दिया, लालाजी ने मूंछ का बाल देखा और देखकर कहता भाई ये बाल तो टेढ़ा भी है और सफेद भी है। जिस समय इसने कहा बाल टेढ़ा है और सफेद है, ये किसान कहता है रे लाला इस बाल को मैंने तुझे बेचा नहीं है, ये मेरी इज्जत का सवाल है। लाला समझ गया व्यक्ति स्वाभिमानी है, पैसे मारेगा नहीं, इज्जत प्यारी है इसे, इसको 1000 रुपए दे दिए। कहते हैं कुछ दिन बाद इसका एक पड़ोसी मिला, कहने लगा रे अब तो काम ठीक चल गया, पैसे कहां से मिले? इसने कहा उस लाला से लेकर आया हूं। कहने लगे वो तो भला आदमी बिना गिरवी रखे कुछ देता ही नहीं। कहने लगे मूंछ का बाल रख के आया हूं गिरवी। कहने लगे अच्छा। अगले दिन ये दूसरा भी पहुंच गया, इसके अंदर स्वाभिमान थोड़ा ही था। ये गया और जाकर के कहता है लालाजी मुझे 1000 रुपए उधार दे दो। कहने लगे गिरवी रखने को कुछ लाए? बोले मेरे पास भी वही है गिरवी रखने को जो तुम रखते हो। कहने लगे क्या? बोले मूंछ का बाल। कहने लगे लाओ फिर। इसने मूंछ का बाल उखाड़ा और दे दिया। लाला ने मूंछ का बाल देखा और देख करके कहता है यार ये बाल तो थोड़ा सफेद है। कहने लगे सफेद है? कहने लगे हाँ। बोले इसे फेंक दो फिर। इसने दूसरा बाल उखाड़ दिया। फिर कहा लो इसे ले लो। लाला कहने लगे ये बाल तो यार छोटा है। कहने लगे फिर इसे भी फेंक दो। फिर तीसरा बाल उखाड़ा, इसने कहा ये बाल तो टेढ़ा है। कहने लगे इसे भी फेंक दो। फिर चौथी बार उखाड़ा, इसने 5-6 बार बाल उखाड़ उखाड़ करके दिए। ये दुखी हो गया। ये कहता है लालाजी अब क्यों बार बार एक एक करके उखड़वा रहे हो? इसने अपना पूरा ही मुंह आगे कर दिया थड़े पे को, और थड़े पे मुंह करके कहता है जौन सा भी अच्छा लगे वो उखाड़ लो पर 1000 रुपए दे दो। ये कहता है तेरे अंदर तो स्वाभिमान नाम की चीज नहीं है, तू अपनी इज्जत को नहीं समझता, तू मेरे 1000 रुपए का खाक वापिस करेगा, मेरी दुकान से तू नीचे उतर। कहा जो व्यक्ति स्वाभिमानी होता है वो किसी के सामने झुकता नहीं है, गिड़गिड़ाता नहीं है। तभी तो कवि कहता है न सर झुका के चलो न सर उठा के चलो, न सर झुका के चलो न सर उठा के चलो, हृदय में स्वाभिमान की ज्योति जगा के चलो, न सर झुका के चलो न सर उठा के चलो, हृदय में स्वाभिमान की ज्योति जगा के चलो, न सर झुका के चलो, अभिमान करना नहीं स्वाभिमान खोना नहीं, अभिमान करना नहीं स्वाभिमान खोना नहीं, बिना बात हंसना नहीं मुश्किलों में रोना नहीं, मंजिल पे जाने के लिए लक्ष्य को बना के चलो, न सर झुका के चलो न सर उठा के चलो, हृदय में स्वाभिमान की ज्योति जगा के चलो, न सर झुका के चलो न सर। सरदार भगत सिंह कहता है रे जज साहब, क्योंकि इसके अंदर तो स्वाभिमान था। सरदार भगत सिंह कहता है रे जज साहब तूने मुझे कह तो दिया कि तुझे हंसी आई इसलिए फांसी की सजा दी है, अब तेरे पास अगर फांसी पे मैं जाकर के हंस पड़ा तो कोई सजा तो नहीं बची। लेकिन हाँ याद रख, तुझे पता नहीं है हम किन की संतान है। अरे हमारे बुजुर्गों के इतिहास को तो जरा पढ़ करके देख, तू तो फांसी की बात कहता है, वो सूली पे भी लटके हुए हंसते रहे, सूली पर भी कभी नहीं रोए। और सरदार भगत सिंह कहता है, जज साहब सुन,
बंदे बैराबी की घटना जज साहब तेरे याद नहीं, सन्यासियों से था लिखी चिली, तन से खून की धार बही, तन से खून की धार बही, बच्चा करके कतल माश की मोटी मुंह में ठूस दई, सरिया लाल घुसेड़े तन में और पता क्या कसर रही, पर हंस के बैरागी, हंस के बैरागी कहे मुझे ना परेशानी होती है, देश धर्म पर मिटे जो उनकी अमर कहानी होती है।